न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में पुडुचेरी में वी नारायण स्वामी की सरकार की खबर होगी, जिसका आज फ्लोर टेस्ट होना है। इस फ्लोर टेस्ट के बाद ही तय होगा कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार बचेगी या गिरेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन की रणनीति की भी चर्चा करेंगे हम आज के पॉडकास्ट में। साथ ही आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा के नेता अब खाप पंचायतों से मिलकर आंदोलन में शरीक न होने की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की भी जानकारी आपको देंगे और बिहार में आज पेश होने वाले बजट पर भी हमारी निगाह होगी, जिसके पल पल के अपडेट आपको न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट पर मिलती रहेगी। फिलहाल पुडुचेरी की खबर। पुडुचेरी में वी नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस गठबंधन की सरकार बचेगी या गिरेगी, इसका फैसला आज होगा। उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन के निर्देशानुसार सोमवार को मुख्यमंत्री नारायण स्वामी को बहुमत साबित करना है। हालांकि 5 कांग्रेस विधायकों और 1 द्रमुक विधायक के रविवार को इस्तीफा देने के बाद वी नारायण स्वामी के लिए सरकार बचा पाना बड़ी चुनौती है। फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार की शाम को मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के आवास पर पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस विधायकों के साथ मीटिंग की और सरकार बचाने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वी नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस और द्रमुक के विधायकों और सांसदों के साथ साथ अन्य पार्टी के नेता भी इस मीटिंग में थे। हमने सोमवार को विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए रणनीतियां बनाई हैं। आपको बता दें, अगर पुडुचेरी की मौजूदा कांग्रेस सरकार और विपक्षी पार्टियां सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत जुटाने से चूक जाती हैं तो राज्य में अगले 3 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। बंगाल चुनाव से पहले अपनी रेल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज कोलकाता से उत्तर दक्षिण लाइन के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता मेट्रो के प्रवक्ता इंद्राणी बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री हुगली जिले में एक कार्यक्रम से नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद आगामी 23 फरवरी से आम लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। इस उद्घाटन समारोह के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम आयोजित करने की रविवार को घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही एक नई रणनीति तैयार करेंगे। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस और 24 को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई न हो। मोर्चा ने कहा कि 26 फरवरी को युवा किसान दिवस और 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, उन्हें हिरासत में लेने और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने जैसा हर दमनकारी उपाय अपना रही है। सिंघू बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है और वह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह प्रतीत होता है। किसानों के चल रहे आंदोलन को खत्म करवाने के लिए भाजपा ने खाप पंचायतों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर बीजेपी की एक कोर टीम शामली जनपद पहुंची है। यह टीम खाप चौधरियों को मनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की इस टीम में कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान व पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी सहित मेरठ मंडल अध्यक्ष मोहित बेनीवाल व सदर विधायक तेजेंद्र निरवाल हैं। उन्होंने सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाड़ पहुंचकर खाप चौधरी से मुलाकात की है। बीजेपी नेता गठवाल खाप के चौधरी हरिकृष्ण के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने किसानों व खाप चौधरी से कृषि कानून को लेकर बातचीत की। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में सहयोग न देने की भी बात कही है। बीजेपी नेताओं का प्रयास है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी दें, जिससे दिल्ली के चारों तरफ चल रहे किसान धरने को खत्म कराया जा सके। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी जारी है। राज्य में रविवार को 6971 मामले सामने आए हैं। इसके बाद से सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई क्षेत्रों में 7 दिनों के लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई है। अमरावती डिवीजन कलेक्टर ने रविवार को अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम और यवतमाल में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये पाबंदियां आगामी 1 मार्च तक जारी रहेंगी। शादियों में केवल 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। वहीं निजी दफ्तरों में केवल 15% कर्मचारियों को आने की इजाज़त दी गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा पुणे में भी लोगों के घूमने फिरने पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक लगी रहेगी। हालांकि इस दौरान ज़रूरी कामों से जुड़े लोग आवाजाही कर सकेंगे, यह जानकारी पुणे संभागीय आयुक्त ने दी है। नीतीश सरकार सोमवार को बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। उम्मीद की जा रही कि इस बार के बजट का आकार 2,20,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में राज्य का बजट का आकार 2,11,761.49 करोड़ रुपए का था। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में स्कीम बजट के लिए 1,05,766 करोड़ और गैर स्कीम के लिए 1,05,995 करोड़ रुपए रखे थे। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 10% राशि की वृद्धि कर सकती है। यही नहीं, इस बजट में आत्मनिर्भर बिहार के लिए सरकार की रूपरेखा पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कई घोषणाएं हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र से 1 दिन पहले यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक की गई। सर्वदलीय बैठक के दौरान बजट की तारीख को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बजट 2 मार्च को पेश किया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि बजट 22 फरवरी को से शुरू हो रहा है और बजट विधानसभा में 26 फरवरी को पेश किया जा सकता है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बजट 26 फरवरी को पेश न होकर अब 2 मार्च को पेश किया जाएगा। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।